नमस्कार आदाब साथियों, मैं सुल्तान अहमद, आज मैं जंतर मंतर पे हूँ। मज़दूर आवास संघर्ष समिति की तरफ से आज यहाँ पे दिल्ली और उसके आसपास जो मज़दूरों की बस्तियों में घर तोड़े जा रहे हैं लोगों के और उनकी आजीविका का साधन छीना जा रहा है, उसी के अगेंस्ट में आज यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च है। काफ़ी करीबन 10 से ज़्यादा जो संस्थाएँ हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। आज इसी सिलसिले में एक साथी हैं, यहाँ पे कुछ बैनर पोस्टर इनके पास में हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसे, और बहुत ही यंग साथी हैं, तो ये कैसे मज़दूरों की आवाज़ को देखते हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बताइए,
तो नाम बताइए। मेरा नाम नरेश है और मैं महाराष्ट्र से पैदल यात्रा करते हुए, जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रवासी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, कुछ पार्ट ऑफ हरियाणा, वहाँ से मैं अभी पैदल यात्रा करते हुए 3600 किलोमीटर पैदल यात्रा करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और मेरा मुख्य मकसद ये है कि जो प्रवासी मज़दूर, हम मज़दूर के नाम पे बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुत मज़दूरों के लिए बहुत सारे लोग संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि प्रवासी मज़दूर बोल के आप जो है अलग से एक संघर्ष किया जाए, प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से एक अटेंशन मिले, तो मेरा कहना है।
कितने दिनों से आप पद यात्रा कर रहे हैं?
मैं 3 महीने हो गए, मैं 88 दिन में दिल्ली पहुंचा था अभी आज।
तो आपके साथ और कितने लोग थे?
कोई नहीं, मैं अकेला ही चल रहा हूँ।
अकेला ही चले?
हाँ, मैं 63 जिले में पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पहुंचा। मैंने हर राज्य में प्रवासी मजदूरों को जो है सरकारी एक ज्ञापन बनाया है मैंने, वो ज्ञापन हर जिले में जाके हर उस DM को देता हूँ और बताता हूँ कि आपके जिले में अगर कोई प्रवासी मजदूर आ रहा है तो आप उसका रिकॉर्ड रखिए। प्रवासी मजदूरों के लिए जो सरकारी योजनाएं बना आप ही नहीं, आप सरकारी योजना बनाने की कोशिश कीजिए, ये करते हुए मैं ज्ञापन देते हुए अभी यहाँ पहुँचा।
तो आपको ये सब जो प्रवासी मजदूरों का जो दर्द है वो क्यों ऐसा लगा कि उनकी लड़ाई को हमें लड़नी चाहिए, इतने लंबी यात्रा करनी चाहिए, सब जगह जिले जिले में जा करके जिला कलेक्टर को आवेदन देने चाहिए ताकि उनके मुद्दों को सुने?
तो मैं खुद एक प्रवासी हूँ, मैं खुद नेपाल से हूँ और मैं गुजरात में जाके बस गया हूँ, और मैं लगभग जब 8 साल का था तब से मैंने अपना रोजगार चालू किया है, 8 साल की उम्र से ही पैसा कमाना चालू किया है, और मैं लगभग 2015 तक प्रवासियों के साथ ही काम करता था, जॉब करता था होटल में, कंपनी, फैक्ट्री, वही मैंने कंडक्टरगिरी भी की। तो बाल मजदूरी के टाइम पर ही मैंने ये समझ लिया था कि प्रवासियों के लिए क्या क्या इशूज़ होते हैं। जब हम लोग देखते हैं प्रवासियों को तो सिर्फ लगता है कि नौकरी कर रहा है, लेकिन वो नहीं है, उसके साथ बहुत सारे चीज़ें होती हैं, मारपीट होना हुआ, मिनिमम वेजेस ना देना हुआ, पगार ना देना। हम लोग बोलते हैं 40 दिन में भी पगार मिलता है, लेकिन 40 दिन में भी नहीं भैया, 3-3 महीने तक पगार नहीं मिलता, या तो पगार मजदूर प्रवासी है तो बोलते थे भैया तू चला जा, धंधा नहीं देना है, तो ऐसे भी इश्यूज होते हैं। तो
इस काम में मुश्किलें क्या आई जब वहाँ से चले, तो कहाँ कहाँ पे परेशानियों का सामना करना?
ऐसा कोई स्पेशल परेशानी तो मुझे नहीं दिखा, मुझे मैंने तो इन्जॉय किया, क्योंकि मैं एक इन्जॉय करने के लिए निकला था कि भाई मैं प्रवासियों के लिए घूम रहा हूँ, तो एक कोई समस्या नहीं आई और लोग थे सपोर्ट करने वाले,
किसी ने रोक टोक नहीं की?
कोई रोक टोक नहीं की, कोई नहीं, हर जगह पे कहीं कहीं पे मैं ऐसे कलेक्टर को जानता हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सम्मान दिया, बहुत सहारा प्रोत्साहन दिया, तो वैसे भी कलेक्टर्स थे, और किसी ने तो कुछ कलेक्टर थे जिन्होंने मुझे भाई बनाया, तो एक बहुत बड़ी बात थी, वो एंजॉय करते हुए ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, और एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि कुछ करने का और एक अलग मुद्दा उठाने का, और प्रवासी मजदूर का मुद्दा ही मैं उठाना चाहूँगा, और प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल अटेंशन हो, और स्पेशल अटेंशन का मतलब है कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक स्कीम बने, क्योंकि मैंने जो जहाँ तक रिसर्च की है और जहाँ तक मैं समझा हूँ, प्रवासी मजदूर बोल के कोई सरकारी स्कीम नहीं है। अभी जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में लोगों को समझ में आया कि प्रवासी मजदूरों को क्या समस्या होता है, 1-2 महीना काम नहीं करेंगे तो वो लोगों को खाने के भी प्रॉब्लम होती है, तो अभी वन नेशन वन राशन का स्कीम लाई है सरकार, और मैं ये चाहता हूँ कि प्रवासियों के लिए बहुत सारी स्कीम ऐसी बने। अब 1-2 साल के लिए कोई प्रवासी कमाने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर अपना इलेक्शन कार्ड नहीं चेंज करेगा, अपना वोटर कार्ड वहाँ पर चेंज नहीं करेगा, अपना आधार कार्ड चेंज नहीं करेगा, अपना राशन कार्ड चेंज नहीं करेगा।
तो यहाँ इस मन से क्या संदेश देना चाहोगे आज के दिन?
अगर मैं आप शहरों में रहते हैं तो प्रवासी मजदूर या मजदूरों की इज्जत करें, इज्जत करने का मतलब है कि आप थोड़ा सा सम्मान से बात करें, सम्मान दें उन्हें, और सरकार से ये है कि आप सरकार जो है प्रवासी मजदूरों के लिए स्कीम बनाए, प्रवासी मजदूरों को स्पेशल अटेंशन देके एक स्कीम या अलग से एक कार्ड बना के दे प्रवासियों को।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस हौसले को सलाम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हौसला आपने दिखाया है ये कंटिन्यू रखेंगे, और ज़रूर जो आपकी डिमांड है प्रवासी मजदूरों को सम्मान मिले उनके लिए सरकार नई योजनाएं लेकर के आए, वो ज़रूर एक दिन कामयाब होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया।